नए प्रकरण की शुरुआत आज हम करने वाले हैं लकारार्थ निर्णय की, और इसके बाद एक और प्रकरण है सुबर्थ प्रकरण। इन दोनों प्रकरणों को पढ़ने में बहुत समय नहीं लगेगा, देखते हैं कितने पाठों में ये लकारार्थ निर्णय संपन्न होता है। ऐसे पहले मैं बता दूं कि ये लकारार्थ निर्णय है क्या, तो आपने सुना होगा कि लकार 10 होते हैं, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग। ये जो 10 लकार हैं, इन 10 लकारों के क्या अर्थ होते हैं वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्यत काल में, ये लकार सब, इन लकारों का विधान होता है, उसमें क्या सूक्ष्म अंतर है, उनके और क्या क्या भेद हैं, कौन कौन से अर्थ हैं, इन्हीं के बारे में इस प्रकरण में हमें पढ़ाई करनी है। बहुत कुछ इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, लेकिन चूंकि ये आचार्य का ग्रंथ है तो इसलिए बहुत कुछ नया भी आपको सुनने में मिलेगा। सबसे पहले तो हम लकार को दो भागों में बांट लेते हैं, तित लकार और ङित लकार। तित लकार और ङित लकार क्या है कि ऐसा लकार जिसमें ट लगा हो, ट की इत संज्ञा हुई हो, वह हो गया तित लकार, और जिस लकार में ङ की इत संज्ञा हुई हो वह हो गया ङित लकार। तो 10 में से 6 लकार जो हैं वह तित लकार हैं और 4 लकार जो हैं वह ङित लकार हैं। तो इस प्रकरण में, भूषण में, 22वीं कारिका में केवल तित लकारों का अर्थ बताया गया है, और इसके बाद फिर एक कारिका आएगी जिसमें कि ङित लकार के अर्थ बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले तित लकार से शुरू करते हैं। ग्रंथ में देखिए, प्रत्येकम 10 लकाराणाम अर्थम निरूपयति, माने इस प्रकरण में 10 लकारों के अर्थों का निरूपण किया जाएगा। निरूपण किया जाएगा मतलब वर्णन किया जाएगा। तो कारिका है, वर्तमाने परोक्षे श्वो भाविनी अर्थे भविष्यति विद्यादौ प्रार्थनादौ च क्रमाज ज्ञेया लडादयः। इसका सामान्य अर्थ तो मैं बता देता हूँ, और विशेष अर्थ जो है भूषणकार की पंक्तियों में देखेंगे। वर्तमाने माने वर्तमान अर्थ में, परोक्षे परोक्ष अर्थ में, श्वो भाविनी, श्व मतलब आने वाला कल, और भाविनी मतलब होने वाला, भविष्य। तो कल जो होने वाला है उस अर्थ में, भविष्यति माने भविष्यत अर्थ में, विद्यादो विधि आदि अर्थ में, प्रार्थनादौ च प्रार्थना आदि अर्थ में, क्रमाज ज्ञेया लडादयः, क्रम से लट आदि लकार हुआ करते हैं। यहाँ तो सामान्य रूप से ये बता दिया कि क्रम रूप क्रमिकतया जो है लट आदि लकार इन अर्थों में होते हैं। अब एक एक करके बताया जाएगा कि किस अर्थ में कौन सा लकार होता है। अब ग्रंथ देखिए, लडादयः तितः सट, माने लट आदि लकार जो तित लकार हैं वो सट होते हैं, माने 6 प्रकार के होते हैं। क्रमेण येषु अर्थेषु द्रष्टव्याः, और क्रमिक रूप से क्रमशः जो है इन अर्थों में इसको यह द्रष्टव्य है माने बोधव्य है, ज्ञातव्य है, जानना चाहिए। तथा ही, अब शुरुआत करते हैं पहले लकार से, तथा ही वर्तमाने अर्थे लट, वर्तमान काल के अर्थ में लट लकार का प्रयोग होता है, और इसके लिए पाणिनि का कौन सा सूत्र है, तो वर्तमाने लट इति सूत्रार्थ। वर्तमाने लट जो पाणिनि का सूत्र है उस सूत्र से वर्तमान अर्थ में लट लकार किया जाता है, इसलिए लट लकार का अर्थ वर्तमान काल होता है। अब वर्तमान काल किसको कहते हैं, तो उसके लिए परिभाषा लक्षण और परिभाषा कुछ भी कह सकते हैं। तो वर्तमान काल की परिभाषा बता रहे हैं या वर्तमान काल का लक्षण बता रहे हैं, दो लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं, एक है प्रारब्धा परिसमाप्तत्वम, और दूसरा है भूत भविष्यत भिन्नत्वम वर्तमानत्वम। ये सब 2 नंबर के प्रश्न में परीक्षा में पूछे जाते हैं कि वर्तमानत्व का लक्षण क्या है, तो आप दोनों को लिख दीजिए उसमें। तो चलिए पहले की बात करते हैं। पहले में कहा गया कि प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वम, प्रारब्ध मान जिसका आरंभ हो चुका है, और अपरिसमाप्त और समाप्ति नहीं हुई है, जिस क्रिया का आरंभ हो चुका है और उस क्रिया की समाप्ति नहीं हुई है, इस समय का जो काल होता है उसी को का नाम है वर्तमान काल। फिर से एक बार सुन लीजिए, जिस जो क्रिया प्रारब्ध हो गई हो, जिस क्रिया का आरंभ हो गया हो किंतु उस क्रिया की समाप्ति नहीं हुई हो, इस दौरान जो समय होता है, इस अवधि का, इस के बीच जो अवधि होती है उसी का नाम है वर्तमान काल। ये है प्रारब्धा परिसमाप्तत्वम का अर्थ। दूसरा अर्थ, दूसरा लक्षण बताते हैं भूत भविष्यत भिन्नत्वम। तीन ही तो काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो ये बड़ा आसान है कि भूत भविष्यत भिन्नत्वम, जो भूतकाल से भिन्न हो और भविष्यत काल से भिन्न हो वह कौन होगा, तो वह वर्तमान काल ही होगा। तो ये भी एक लक्षण बताया कि भूत भविष्यत भिन्नत्वम, भूत और भविष्य से भिन्न जो काल है वह वर्तमान काल होता है। इस तरह से वर्तमान काल का लक्षण बताया। अब उदाहरण एक बताते हैं कि पचति इत्यादो, जैसे पचति प्रयोग होता है तो पच धातु से वर्तमाने लट से लट लकार लाते हैं, लट के स्थान में तिप होता है, फिर साव धातु संज्ञा सप ये सब होकर के पचति रूप की सिद्धि होती है। तो यह जो पचति है इसमें लट लकार का प्रयोग हुआ है और लट लकार का अर्थ क्या बताया गया, वर्तमान काल बताया गया। और वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो इसका के लक्षण में कहा ना कि जहाँ पर क्रिया का आरंभ हो चुका हो परंतु उस क्रिया की समाप्ति न हुई हो उसके समय, उसके बीच का समय जो है वह वर्तमान काल होता है। तो उसके बीच का नहीं कह करके, माने आरंभ से लेकर के और समाप्ति से पहले तक का जो काल है वह वर्तमान काल है। तो यहाँ पचत के उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ पर कौन सी क्रिया है, पाक क्रिया है। तो पाक क्रिया का जब आरंभ हो गया किचन में और पाक क्रिया का एंड नहीं हुआ है, समाप्ति नहीं हुई है, तो उस स्थिति में आप कभी भी पचति प्रयोग कर सकते हैं। चाहे वह एक घंटे भर में पाक क्रिया होती है तो कभी एक घंटे तक 60 मिनट तक जो है आप कह सकते हैं कि पचति पचति पचति। लेकिन जब वो चूल्हे को हम ऑफ कर देते हैं, गैस चूल्हे को, तो उसके बाद फिर पचति का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर पाक क्रिया समाप्त हो जाती है। तो पाक क्रिया की समाप्ति से पहले और पाक क्रिया के आरंभ से के बाद, या पाक क्रिया के आरंभ को ही पकड़िए, वहीं से लेकर आरंभ से लेकर के और समाप्ति से पहले तक पचति का प्रयोग किया जाता है। तो पाक क्रिया में आरंभिक क्रिया क्या है, तो अधिश्रयन क्रिया होती। सबसे पहले पाक क्रिया में क्या किया जाता है कि बर्तन को हम चूल्हे पर रखते हैं, उसको अधिश्रयन कहा जाता है संस्कृत में। तो अधिश्रयन से पाक क्रिया का आरंभ होता है और सबसे लास्ट में कौन सी क्रिया होती है, अधःश्रयन, माने उस बर्तन को चूल्हे पर से हटा करके नीचे में रखते हैं। तो चूल्हे पर रखना अधिश्रयन कहलाता है, चूल्हे से नीचे में रखना अधःश्रयन कहलाता है। तो अधिश्रयन से लेकर के और अधःश्रयन तक के समय में वर्तमान काल रहता है और उस समय में पचति इस क्रिया का प्रयोग होता है। तो वही कहते हैं कि पचति इत्यादो, अधिश्रयन आदि, अधःश्रयन अंत्य, मध्ये तत् अस्ति इति भवति लट् प्रयोगः, माने पाक क्रिया के अधिश्रयन से लेकर के अधःश्रयन तक पचति इस पद का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जबरदस्त शंका उठती है कि वर्तमान काल का जो लक्षण बताया कि जिसका आरंभ तो हुआ हो और समाप्ति न हुई हो, समाप्ति न हुई हो वहाँ पर वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है, और जो नित्य है, जैसे आत्मा नित्य होती है, पर्वत, पर्वत भी एक प्रकार से नित्य ही होता है। वह कब पर्वत जो है शुरू हुआ बनना और वह तो कोई नहीं जानता है ना, और पर्वत की समाप्ति कब होगी वो भी नहीं जानता है। तो ये सब जो है नित्य है, आत्मा है, पर्वत है, और इसमें भी अस्ति का प्रयोग होता है। जैसे आत्मा अस्ति, पर्वताः संति, तो यहाँ पर वर्तमान काल का प्रयोग जो किया जाता है अस्ति का और संति का, वो कैसे होता है, क्योंकि वर्तमान काल का जो लक्षण हमने किया कि आरंभ तो हुआ हो किंतु समाप्ति न हुई हो, वहाँ पर वर्तमान कालिक पचति आदि का प्रयोग किया जाता है या अस्ति आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये अनित्य वस्तु के लिए तो ठीक है, अनित्य वस्तु का आरंभ भी होता है और उसकी समाप्ति भी होती है, लेकिन जो नित्य है, आत्मा है, पर्वत है, उसमें आत्मा अस्ति कैसे प्रयोग होगा, पर्वता संति ऐसे कैसे प्रयोग होगा, क्योंकि उसका तो आरंभ हुआ नहीं है, आरंभ को किसी ने देखा नहीं, तो और समाप्ति कब होगी वो भी पता नहीं है। तो वहाँ पर आत्मा अस्ति जो प्रयोग होता है वो कैसे होता है, वह तो प्रयोग होना नहीं चाहिए, इस तरह की शंका होती है। इस शंका के समाधान के लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय व्याकरण निकालते हैं, कहते हैं कि हाँ ये बात सही है कि आत्मा का आरंभ हुआ है या पर्वत का आरंभ हुआ है, इस बात को तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि ये तो नित्य चीज है, नित्य का कोई आरंभ नहीं होता, अनित्य की कोई समाप्ति भी नहीं होती, किंतु ऐसा है कि तत्तकालिक जो राजा हैं, जैसे पर्वत के समय के जो राजा हैं, जहाँ पर पर्वत है उस पर्वत के क्षेत्र का कोई तो राजा होगा, या आत्मा है तो आत्मा किसी न किसी में तो आत्मा रहती है, शरीर में आत्मा रहती है, तो जैसे शरीर में आत्मा रहती है तो शरीर का तो आरंभ होता है ना, और शरीर की भी की समाप्ति भी होती है, माने मृत्यु भी होती है, तो जब तक शरीर है तब तक उस शरीर में रहने वाली आत्मा है, ऐसा मान करके हम आत्मा अस्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही पर्वता संति भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पर्वत है तो वह पर्वत किसी राजा के अंतर्गत होगा, उस पर्वत का कोई न कोई स्वामी होगा, कोई न कोई राजा होगा, तो स्वामी पर्वत का भले आरंभ न हो लेकिन पर्वत का जो राजा है उस राजा का तो आरंभ होता है, उस राजा की तो समाप्ति होती है, तो तत्तकालिक राजा माने आत्मा के समय का जो राजा है या पर्वत के समय का जो राजा, पर्वत के समय का राजा तो आप समझ रहे होंगे, और आत्मा के समय का राजा का मतलब वही शरीर, माने शरीर में रहने वाली जो आत्मा है तो वहाँ पर शरीर को आधार मान लेंगे, और जहाँ पर पर्वत है वहाँ पर पर्वत का स्वामी जो राजा होगा उसको आधार मान लेंगे, और उसके आरंभ को लेकर के उसकी समाप्ति को लेकर के हम अस्ति और संति का प्रयोग करेंगे। वही कहा पंक्ति में देखिए कि आत्मा अस्ति पर्वता संति इत्यादो, इन सब प्रयोगों में माने जहाँ नित्य है वहाँ पर तत्तत्कालिकानाम राज्ञाम क्रियाया अनित्यत्वात्, उस समय के जो राजा हैं उन राजाओं की क्रियाएँ जो हैं वो तो अनित्य हैं, भले आत्मा नित्य है पर्वत नित्य है लेकिन उस समय के जो राजा हैं उनकी क्रिया जो है वह तो अनित्य होती है, और उन्हीं क्रियाओं को लेकर के तद विशिष्टस्य माने राजा की जो अनित्य क्रिया है उस अनित्य क्रिया से विशिष्ट माने युक्त जो आत्मा या उस अनित्य क्रिया से युक्त जो पर्वत, उस पर्वत में उत्पत्ति का समाप्ति का आरोप करते हैं, और आरोप करके ही जो है वर्तमानत्वम उह्यम, वर्तमानत्व जो है उही होता है, माने वर्तमानत्व का व्यवहार करना चाहिए। तो मतलब निष्कर्ष ये निकला कि आत्मा भले नित्य है लेकिन आत्मा जिस शरीर में रहता है राजा आदि के शरीर में, उस राजा की जो क्रिया है वह तो अनित्य होती है, तो राजा की क्रिया की जो अनित्यता है उसका आरोप हम आत्मा में करेंगे और फिर आत्मा अस्ति का प्रयोग हो जाएगा। ऐसे ही पर्वत का जो राजा है उस राजा में रहने वाली क्रिया अनित्य है, उस अनित्यता का आरोप हम पर्वत में करके पर्वता संति इस तरह से वर्तमान काल का प्रयोग हम करेंगे। अब यहाँ पर ये बात होती है कि ये आप अपने मन से कह रहे हैं कि राजा की क्रिया की अनित्यता के आधार पर ऐसा प्रयोग होता है, ये मन से कह रहे हैं या कोई प्रमाण भी है, तो आगे प्रमाण बता रहे, कहते हैं कि उक्तं ही भाष्ये, नहीं जी मैं जो कह रहा हूँ वो प्रामाणिक बात है, भाष्य में पतंजलि ने कहा है क्या कि यह भूत भविष्यत वर्तमानानाम राज्ञाम क्रियाः तिष्ठते अधिकरणम इति, माने भूतकाल का भविष्यत काल का और वर्तमान काल का जो राजा है उस राजा की क्रिया उसमें रहती है आत्मा, उस राजा की क्रिया को आत्मा में आरोपित करते हैं, पर्वत में आरोपित करते हैं, और इस तरह से वहाँ पर वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है, ये बात पतंजलि ने कही हुई है भाष्य में। अब वाक्यपदी का भी प्रमाण देते हैं एक कारिका के द्वारा, वो कारिका है परतो भिद्यते सर्वम आत्मा तु न विकम्पते पर्वतादि स्थितिस्तस्मात् पररूपेण भिद्यते, कहा कि ये जितने भी काल हैं भूतकाल भविष्यत काल और वर्तमान काल, इन काल के कारण जो है ना सारी क्रियाएं भिद्यते, परतो भिद्यते सर्वम, सर्वम से यहाँ पर सारी क्रिया अर्थ कर लीजिए कि सारी क्रिया जो है भिद्यते माने अलग अलग हो जाती है, परतः माने दूसरे के द्वारा, किसके द्वारा तो क्रिया के द्वारा, जैसे देखिए ना एक क्रिया तो एक ही है लेकिन उसमें लगा दीजिए वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, भविष्यत कालिक क्रिया, तो ऐसे क्रिया एक ही है लेकिन इसके कारण काल के कारण वो क्या है उसमें भेद हो गया, तीन भेद हो गए, वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यत कालिक क्रिया। तो इस तरह से क्रिया के एक होने पर भी काल के कारण उसमें भेद हो जाता है। तो परतो भिद्यते सर्वम, आत्मा तू न विकम्पते, किंतु आत्मा में जो है ना यह भेद नहीं होता है, आत्मा एक ही होती है, वह नित्य होती है, उसमें आत्मा में भेद नहीं होता। आत्मा तू न विकम्पते, विकम न विकम्पते माने न भिद्यते, माने आत्मा में कोई भेद नहीं होता। फिर कैसे उसका प्रयोग किया जाएगा, अस्थि पचति इत्यादि का, तो कहते हैं पर्वत आदि स्थिति तस्मात परूपेण भिद्यते, कहा कि पर्वत आदि, आदि से आत्मा को ले लीजिए कि पर्वत आत्मा आदि की जो स्थिति है वह परूपेण भिद्यते, माने दूसरे के रूप के आधार पर उसमें भेद को माना जाता है। पर रूप क्या है, दूसरे का रूप क्या है, तो वही राजा, तत्तकालिक जो राजा है माने पर्वत कालिक राजा या आत्मा कालिक जो राजा है उसके कारण से ही उसमें भेद होता है। भेद होता है माने वर्तमान कालिक पर्वत, भूतकालिक पर्वत और भविष्यत कालिक पर्वत, वर्तमान कालिक आत्मा, भूतकालिक आत्मा और भविष्यत कालिक आत्मा, इस तरह से उसमें तत्तकालिक जो राजा है उसके कारण उसमें भेद होता है, माने एक के ही तीन तीन भेद हो जाते हैं। या इति वाक्य पदीय च, ऐसा वाक्य पदीय में कहा गया। और भी प्रमाण देते हैं, कहा कि वेद में भी इस तरह से प्रयोग किया गया है, एवं तम आसीत तुच्छे न अभ्यपिहितम यदासीत अहम एक प्रथमम आसम वर्तामि च भविष्यामि च इत्यादि श्रुतियोपि योज्या। कहा कि इसी तरीके से श्रुति में भी जहाँ पर नित्य के लिए ये भूतकाल का प्रयोग किया गया, वर्तमान काल का प्रयोग किया गया, भविष्यत काल का प्रयोग किया गया नित्य पदार्थ के लिए, उसमें भी आपको यही मानना चाहिए कि आरोप करके तत्तत्कालिक राजा का आरोप करके जो है वेद के मंत्र का भी अर्थ निकालना चाहिए। अब जैसे मैं अर्थ बताता हूँ, तमो आसीत, तम ऐसे अंधकार को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वेद में तम जो कहे वह कहा गया है किसको, अविद्या को, अज्ञान को। अब अविद्या जो है वह नित्य है तो उसमें वह तो हमेशा रहेगा, उसमें तो ये नहीं कहेंगे कि तमो आसीत माने भूतकाल का प्रयोग किया है यहाँ पर, जबकि वो वर्तमान भी रहता है भविष्यत भी रहता है, लेकिन वही तत्तत्कालिक राजा की क्रिया की अनित्यता का आरोप करके तमो आसीत ये प्रयोग होता है। ऐसे ही तुच्छे न अभ्यपिहितम यदासीत, यहाँ तुच्छ शब्द जो है उसका भी अर्थ अज्ञान है, अविद्या है, कहा कि तुच्छे न माने अज्ञान से अभ्यपिहितम यत आसीत, आत्मज्ञान जो है वह ढका हुआ था, अज्ञान से आत्मज्ञान ढका हुआ था। अब ये जो है माने आत्मज्ञान जो ढका रहता है अज्ञान से, ये भी हमेशा रहता है, इसमें भूत भविष्यत वर्तमान नहीं होता, फिर भी वेद में आसीत प्रयोग किया, भूतकाल का प्रयोग किया, तो वो भी कैसे, तो तत्तत्कालिक राजा की क्रिया की अनित्यता का आरोप करके प्रयोग होगा। ऐसे ही अहम एक प्रथमम आसम, आत्मा के बारे में है कि मैं पहले एक ही था, वर्तामि च अभी एक ही हूँ, और भविष्यामि च और एक ही रहूँगा, तो ये कैसे होगा संभव, तीनों काल का प्रयोग आत्मा के लिए कैसे संभव होगा। तो आत्मा किसी न किसी के शरीर में होती है, उस शरीर की वर्तमान कालिक अवस्था को लेकर के वर्तमान का प्रयोग होगा, भूतकालिक अवस्था को लेकर के भूतकाल का प्रयोग होगा, और भविष्यतकालिक अवस्था को लेकर के भविष्यत काल का प्रयोग होगा। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर व्याख्या की। अब आगे का पाठ अगले पाठ में पढ़ेंगे, आज यहीं रखते हैं।